ये है 20/12/88 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। रिकॉर्ड चला है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। भाग्य विधाता किसको कहा जाता है? भारतीय परंपरा में या शास्त्रों में भाग्य विधाता किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को। ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी से बड़ी माँ। लेकिन वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। भाग्य विधाता माता की पूजा होती है। माना वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तब जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो उसके लिए ये गीत है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ये सभी गीत तुम्हारे शास्त्र हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता और उनके साथ सभी शास्त्र महाभारत रामायण शिव पुराण वेद उपनिषद आदि सभी इनमें हैं। इसमें से ही सब निकल पड़ते हैं। किसमें से? गीता से। तो ये वंडरफुल बात है। क्या वंडरफुल बात है? शास्त्रों की परंपरा में वेद पुराने माने जाते हैं या गीता पुरानी मानी जाती है? है? गीता पुरानी मानी जाती है। वेद शास्त्र पुराने माने जाते हैं। वेद शास्त्र ज्यादा पुराने हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये वेद ज्यादा पुराने हैं या गीता ज्यादा पुरानी है? वेद ज्यादा पुराने हैं। फिर यहाँ ऐसे क्यों कहा कि गीता के सब शास्त्र वाले बच्चे हैं? गीता से ही सब निकल पड़ते हैं है? ये वंडरफुल बात है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं। इनके पास कोई शास्त्र तो है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद शास्त्र ग्रंथ आदि निकल आते हैं। फिर बुरी गीत बजा। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ये है मम्मा का गीत। माताएं तो ढेर है परंतु मुख्य कौन है? मुख्य है जगदम्बा। उनको अब कोई भी नहीं जानते। ऐसे क्यों कहा? जिस समय ये वाणी चलाई गई है ब्रह्मा के तन से माउंट आबू में उस समय कोई नहीं जानता था। किनको? जगदम्बा को नहीं जानता था। जगदम्बा सरस्वती नाम नहीं दिया कन्या थी तो क्या हुआ? देवियां तो सब कन्या ही होती है। माता का टाइटल उनको परमात्मा के संबंध के आधार पर मिल जाता है। सरस्वती जगदम्बा ओम राधे जिनका नाम था उनके लिए ऐसे क्यों कहा कि उनको अब कोई नहीं जानते हैं। माताओं में मुख्य है जगदम्बा, कोई नहीं जानते हैं, कोई में क्या ब्राह्मण परिवार नहीं आया, आया तो ऐसा क्यों कहा कि कोई नहीं जानते हैं। भाई जी कहते हैं कि जगदम्बा सरस्वती ओम राधे वही जगदम्बा, लेकिन वो जगदम्बा का संपन्न रूप नहीं, जो जगदम्बा की मूर्तियां संसार में पूजी जाती हैं वो है ब्रह्मा, माना दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ही उसमें प्रवेश करती है, इसलिए बोला कि उनको अब कोई भी नहीं जानते, उनको कहके दूर क्यों कर दिया है, क्योंकि भविष्य की बात बताई, अब जानने का सवाल ही नहीं, माने जिस समय ये वाणी चलाई गई उस समय वो जगदम्बा का प्रैक्टिकल रूप था ही नहीं, इसलिए बोला सन्यासी लोग कभी भी जगदम्बा के पास नहीं जाएंगे, क्यों सन्यासी लोग जगदम्बा के पास क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम माताओं का तिरस्कार करते हैं ना, वो माताओं को नरक का द्वार कहते हैं, नरक का द्वार समझ करके भाग जाते हैं। वास्तव में उन्हों का भी उद्धार करने वाला जगदम्बा का रूप है, उन सन्यासियों का भी उद्धार करने वाली जगदम्बा है और उनकी सेवा है, कितना फर्क है। वो समझते हैं स्त्री नरक का द्वार है, तो फिर जगदम्बा के पास सभी कैसे जाएंगे। वास्तव में स्वर्ग का द्वार जगदम्बा खोलती है, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, ये तो बोला मुरली में, लेकिन स्वर्ग का द्वार खोलने में आगे मुख्य निमित्त कौन होगी, जगदम्बा। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा, बा बड़े से बड़ी माँ, वो ब्रह्मा का रूप नहीं है, लेकिन वो ही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब प्रवेश करता है कोई स्त्री चोले में तो जब जगदम्बा के रूप में संसार में गाया जाता है, पूजा जाता है, पूजा तब जाता है, किसी की पूजा तब होती है, गायन तब होता है जब कोई कार्य करके जाता है, तो स्वर्ग का द्वार खोलती है यह जगदम्बा। फिर पहले वह खुद ही जगत की मालिक बनती है, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो, उनका ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, इनका गायन है, हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये किसका गायन है, उसका नहीं कहा, किसका कहा, उनका, उनका माने कौन, जगत पिता और जगदम्बा, भल वो अर्थ नहीं समझते हैं कि शिव बाबा को ही तुम माता पिता कहा जाता है, वो भी भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि जिस तन के द्वारा मुरली चलाई जा रही है उस तन के द्वारा वो पूजनीय कार्य संपन्न नहीं हो सका। कौन सा? स्वर्गीय संगठन की स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हो सका। लेकिन वही सोल जब कोई ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करती है और संसारी संसार के बीच में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है, तो उसी की यादगार में भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए जाते हैं। यहां बनता है बड़े से बड़ा एक मंदिर, जब विनाश होगा सत्यता होगी सारे संसार में, तो बाकी सब ये जड़ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर रहेगा बेगा, जगत पिता जगदम्बा। तो ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है, सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। अजमेर में नामी ग्रामी क्यों है? है? जिस अधूरे ब्रह्मा की यादगार अजमेर में नामी ग्रामी मंदिर बना हुआ है, वो सिर्फ अजमेर में ही क्यों है? राम के, कृष्ण के, जगदम्बा के, विष्णु के मंदिर चारों ओर हैं, शिव के मंदिर चारों ओर हैं, लेकिन उस ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ अजमेर में है। क्यों? अज और मेढ़, ये दो शब्द मिलकर के बने हैं अजमेर। अजा कहते हैं बकरी और मेढ़ कहते हैं मेढ़ा, भेड़ बकरियों का जो देश है, वहां ब्रह्मा की मूर्ति स्थापन करके ब्रह्मा की यादगार क्यों बनाई? क्योंकि प्रैक्टिकल में जब ब्रह्मा का पाठ चला था षष्ठी के आदि में, तो जिस स्थान माउंट आबू से ये पाठ चला था और समाप्त हुआ था, वहां भेड़ बकरियां जैसी आत्माएं इकट्ठी हो गई थी। भेड़ बकरियों की विशेषता क्या होती है? एक तो उनमें मैं भरी हुई है, और दूसरी बात, एक अगर गड्ढे में जाएगी तो पीछे पीछे सारी गड्ढे में चली जाएंगी। अपनी अकल नहीं भराएंगे कि सही बात क्या है, सच्चाई क्या है। इसलिए बोला प्रैक्टिकली यादगार है अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर, नामी ग्रामी है। वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। क्या ऐसे नहीं कि वहां ब्राह्मण रहते नहीं है? वहां भी ब्राह्मण रहते हैं। जो वहां के रहने वाले मंदिर के ब्राह्मण हैं, वो ही ब्रह्मा की पूजा करते हैं। बाकी बाहर से जाने वाला कोई पूजा नहीं करता। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, सार सिद्ध और पुष्कर में रहने वाले, उनको पुष्करणी ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या नाम दिया बाबन? भारतीय परंपरा में तो सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। बाबा ने नाम क्या दिया? सार सिद्ध, सार को सिद्ध करने वाले। क्या ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने बोला तो बहुत कुछ, लेकिन उनमें से जो सार सार की बातें हैं, उनको अपने जीवन में सिद्ध कर लिया, प्रैक्टिकल में धारण कर लिया, गहराई तक बात को समझ लिया, नई दुनिया की प्लानिंग क्या है, ऐसे ब्राह्मणों को कहा जाता है सार सिद्ध, सार को सिद्ध करने वाले सारस्वत ब्राह्मण। और दूसरे बताए, पुष्कर में रहने वालों को कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? पुष्करणी, पुष माना धक्का देना, और करणी माना करने वाले, माना धक्का देकर के कोई कार्य करने वाले। ان کی لگن نہیں ہے ایشوریہ سیوا کی, پرماتما کے گیان کو سنسار میں پرچار پرسار کرنے کی, لیکن ڈراما کا دھکا ان کو لگائے رہا ہے, اس لیے کر رہے ہیں. کیسے 76 سے جو بابا کی گھوشنا کا ٹائم تھا کہ براہمنوں کی سنگمی کی دنیا میں استھاپنا اور وناش کا کاریہ شروع ہوگا, ایک طرف ہاہاکار اور دوسری طرف جے جےکار ہوگا, تو برہما سے اتپن ہوئے دو پرکار کے جو براہمن ہیں ان میں دو کھنڈ ہو گئے, ایک سارسوت براہمن اور دوسرے پشکرنی براہمن. پشکرنی براہمن وہ یادگار کہاں کی بتائی, اجمیر کی یادگار. اجمیر میں تو پریکٹیکل ہے, یادگار ہے واستو میں ورتمان سمے کے ماؤنٹ آبو کی. وہ سار کی باتوں کو پکڑنے والے نہیں ہیں, وستار کو پکڑتے ہیں. پرماتم گیان کا وستار اور پرماتم گیان کا سار, سار کو اگر گرہن کریں گے تو شکتی ملے گی, اور وستار میں تو شکتی ہوتی نہیں. تو جن آتماؤں نے وستار کو دھارن کیا ان میں شکتی نہ ہونے کے کارن انہیں پش کرنے کا کوئی کاریہ ایسا کرانا پڑتا ہے جس سے وہ دھکا دے کر کے چلتی ہے. کیسے؟ جب دو حصے ہو جاتے ہیں براہمنوں کے, سارسوت اور پشکرنی, تو جو سارسوت براہمن ہیں سار سدھ کرنے والے ان کا نام دے دیا جاتا ہے شنکر پارٹی. کیا نام دے دیا جاتا ہے؟ شنکر پارٹی. اچھا کوئی نہیں, جب دو پارٹیاں ہوتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی اینٹی کہی جاتی ہیں. بابا نے شنکر پارٹی, برہما پارٹی, وشنو پارٹی نام کبھی نہیں دیا وانی میں. کیا نام دیا؟ ایڈوانس پارٹی نام دیا. تو جو مقابلے میں دوسرا گروپ کھڑا ہو جاتا ہے چھوٹا سا لیکن پاورفل, کیونکہ سار سدھ ہے, سار میں تو پاور ہوگی, تو ایسی پاورفل آتماؤں کے سنگٹھن کو اس کے پربھاؤ کو نشٹ کرنے کے لیے انہیں جبرین سیوا کے فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے. اترنے کی اچھا نہیں رہ جاتی کیونکہ 76 میں جو وناش کی گھوشنا تھی وہ ان کے متانکول جیسا انہوں نے سمجھ رکھا تھا پشکرنی براہمنوں نے, وہ ستیہ ثابت نہیں ہوئی. اور جب وہ گھوشنا ستیہ ثابت نہیں ہوئی تو ان پشکرنی براہمنوں کو پرماتما کے مہاواکیوں کے اوپر سے نشچے وشواس اکھڑ جاتا ہے. جب پرماتما کے مہاواکیوں سے اس نشچے اور وشواس ہی اکھڑ گیا, شردا ہی ٹوٹ گئی, تو کیا وہ ایشوری سیوا کریں گے؟ اس پرماتما کی وانی کو اکثر سے جیو کا تیو پرچار پرسار کرنے کے لیے پریتن کریں گے؟ نہیں کرتے. پرماتما کی وانی سے جیسے انہیں کوئی لینا دینا نہیں, اپنا پربھاؤ پرستر کرنے کے لیے وہ جبرین جیسے کبوتر کے گلے میں پرچہ باندھ دیا جاتا ہے, سندیش باندھ دیا جاتا ہے, ایسے ایشوریہ سیوا کا سندیش لے کر کے سنسار میں اترتے. کہتے ہیں نا گلے پڑ گیا یا گلے پڑ گئی, اس کا کیا ارتھ ہوا؟ جیسے جبرین کسی کے متھے مر جاتی ہے کوئی چیز, اگر وہ ایشوریہ سیوا نہیں کریں گے اس طرح کی تو دوسری پارٹی کا پربھاؤ بڑھتا چلا جائے گا دن تو نہ رات چوگنا, اور پشکرنی براہمنوں کا پربھاؤ ختم ہو جائے گا, نشٹ ہو جائے گا. तो डर की वजह से ईश्वरीय सेवा में उतरते हैं। तो बोला पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है पुष्करणी? क्योंकि वो ब्राह्मण पुष्कर के उनको जब ड्रामा पुश करता है, धक्का देता है, तब ईश्वरीय सेवा के फील्ड में उतरते हैं। परंतु उन ब्राह्मणों को इस बात का पता थोड़े ही है, किस बात का, कि हम पुष्करणी ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हैं? पुष्करणी ब्राह्मण हैं। कहेंगे हम ब्राह्मण मुखवंशावली हैं। क्या कहेंगे? हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते हैं। ज्यादा किसको जानते हैं? जगदम्बा को। तुम बच्चों को लज्जा आनी चाहिए, जो सन्यासियों के पैर थाली में रख करके धोते हो, किस बात में लज्जा आनी चाहिए? है इस बात में लज्जा आनी चाहिए जो घर घाट छोड़ करके आश्रम बना करके जिंदगी जीते हैं, गृहस्थ जीवन में नहीं रहते। ऐसे सन्यासी तुम माताओं से क्या करवाते हैं? अपने पांव धुलवाते हैं, तुम उनके पांव धोते हो। क्या मतलब हुआ है? उनके पांव माताएं बैठ धोती हैं। क्या मतलब हुआ? पांव कौन से हो? तो भक्ति मार्ग में स्थूल पांव धुलवाते हैं। यहां जो पुष्करणी ब्राह्मण है वो कौन से पांव धुलवाते हैं? है? हाँ, कन्याएं माताएं जाकर के उनकी सेवा करती हैं। कन्या माताओं में प्योरिटी ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा प्योरिटी होती है? हैं? कन्या माताओं में ज्यादा प्योरिटी होती है। उसके मुकाबले पुरुषों को तो बाबा ने क्या बोल दिया? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। जो है ही दुर्योधन दुशासन, ऐसे पुरुषों को बैठ करके कन्याएं माताएं उनका संग का रंग करें तो उससे उनका पतन होगा या पावन बनेंगी? पतन होगा। तो सन्यासी लोग क्या कहते हैं? सारी दुनिया गंगा में जाकर के स्नान करती है, गंध छोड़ देती है, और हम उसमें जब पांव डालते हैं तो क्या हो जाती है? पावन हो जाती है। वो उल्टी बात पढ़ाते हैं। परमात्म ज्ञान जो सिखाता है उसके जस्ट उल्टी बात बताते हैं। उनका कहना है कि हम ईश्वरीय ध्यान ज्ञान में लवलीन रहते हैं, दुनियादारी के धंधे धोरी को हम छोड़े हुए हैं, इसलिए हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है। इस संसार में हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही श्री श्री 108 की माला बनाने वाले, श्री श्री 108 का तहसील धारण करने वाले हैं, इसलिए हमारे संसर्ग संपर्क से इनका भी उद्धार, इन कन्याओं माताओं का भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन बात उल्टी है, इसलिए बाबा ने बोला तुम बच्चों को लज्जा आनी चाहिए जो सन्यासियों के पैर थाली में रख करके धोते हो। किसको धन मिलता है तो समझते हैं ये साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। यहां कौन से धन की बात है? ज्ञान धन की बात। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो भी साधु सन्यासी हैं पुष्करणी ब्राह्मणों के बीच में, उन साधु सन्यासियों को क्या समझती है माताएं? कि हमें इनसे ज्ञान धन मिलता है। किनसे मिलता है? उन साधु सन्यासियों से मिलता है। मिलता है? उनसे नहीं मिलता है। मिलता किससे है? वास्तव में ईश्वर ही आकर के सत्य ज्ञान देता है। ईश्वर सच्चा ज्ञान देने वाला वो ही ज्ञानी है, बाकी सृष्टि पर सब अज्ञानी है। उसके दिए हुए ज्ञान को ही प्रचार प्रसार करने का काम मनुष्यों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, ब्राह्मण बच्चों के द्वारा होता है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये ज्ञान हमने दिया, या कोई ये समझे फॉलोअर कि इन्होंने दिया ज्ञान दिया, तो ये तो झूठी बात है। ईश्वर की कृपा नहीं समझते हैं कि हमको ये ज्ञान ईश्वर ने दिया है। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा नहीं कर सकता। इस बात की ज्ञान धन देने की जो असली ज्ञान धन है वो देने की कृपा मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मैं जो ज्ञान धन दूंगा डायरेक्ट मुख से, उससे ही सदगति होती है। और बाकी जितना भी थ्रू मिलता है उससे सदगति मनुष्य गुरुओं के थ्रू मिलता है, उससे सदगति नहीं होती। अगर हुई होती तो 2500 वर्ष में कितने गुरु हो गए, अभी तक बहुतों की सदगति हो जाती। सन्यासियों आदि के पास क्या रखा है, धन को तो वो मानते नहीं। क्या नहीं मानते हैं? वो तो अपना घर घाट और धन संपत्ति खुद ही छोड़ करके भाग जाते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि वो स्थूल धन को भी नहीं मानते और ज्ञान धन को भी विशेष महत्व नहीं देते। तो वो हमको धन देंगे कैसे जब वो खुद ही धन को छोड़ करके तिरस्कार करके भागते हैं, तो हमको धन कैसे देंगे? वो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है। उनमें ये आस रखना कि पुत्र मिले, यह मिले, ये सब रंग बातें। वो तो गृहस्थ धर्म को छोड़ देते हैं, तिरस्कार करते हैं। सन्यासियों आदि से जाकर के पुत्र मांगना, सगाई आदि कराना, ये कितनी रंग बातें हो जाती है। आगे हम भी साधु सन्यासियों आदि से जाकर के सगाई कराते थे, अभी समझते हैं उनको कुछ भी वर देने का तो हक है ही नहीं। वर देते हैं ना, आयुष्मान भव, तो वो अल्पकाल की आयु का वर देंगे या सदाकाल की आयु का वर देंगे? वो तो अल्पकाल की आयु का वर देते हैं। और उनके कोई वर देने से कोई आयुष्मान थोड़ी बन जाता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, दूसरी आत्माओं की सेवा की होगी, तो इस जन्म में लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य किसी को मिल सकता है। पुत्रवान भव का जो वरदान देते हैं ये भी अल्पकाल का। आजकल बच्चे भी कैसे पैदा होते हैं, बिच्छूटिंडन पैदा होते हैं। तो ऐसे बिच्छूटिंडन बच्चों को लेने से कोई फायदा है वरदान में? यह वर असली रूप में वो नहीं दे सकते। पुत्रवान भव और आयुष्मान भव, वो तो तुम बच्चों को सुख संपत्ति दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद ही बच्चों को छोड़ देते हैं, सुख संपत्ति को छोड़ देते हैं। जो अल्पकाल की संपत्ति है इस दुनिया की वो खुद ही छोड़ते हैं, तो तुमको कहां से देंगे? मनुष्य बिचारे कितना उनको जंजीरों में, उनकी जंजीरों में फंसे रहते हैं। अभी तुम बेसमझदार से समझदार बनते हो। अपन तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। किस बात में, कैसे? अपन सन्यासियों की महिमा किस आधार पर करते हैं? हाँ,
किस पवित्रता है, तो इसलिए हम तो महिमा भी करते हैं कि ये सन्यासी अगर पवित्र न होते तो भारत काम आदमी में जल मरता। परंतु इन सन्यासियों को समझाने वाला कोई है नहीं, کیا کیا سمجھانے والا ہے؟ کیا سمجھانے والا کہ تم نے جو پوترتا کا دان دیا ہے وہ الپ کال کا دیا ہے اور الپ شکتی والا دیا ہے. واسطو میں جو پوترتا کا اصلی پاٹھ پڑھاتا ہے وہ پرماتما آ کر کے گرہستیوں کو پڑھاتا ہے جسے سدا کال کی پراپتی ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں. وہ سنیاسی کیا جانے راجیوگ کی باتوں کو کہ راجیوگ کیا ہے, اس میں کیا راز بھرا ہوا ہے. انہوں کو ماتاؤں کو ہٹیوگ سکھلانے کا ادھیکار ہی نہیں. کیوں کیوں سکھلانے کا ادھیکار نہیں ہے یوگ؟ کیونکہ وہ نیورتی مارگ والے اور ماتائیں سب پروتی مارگ والی. تو پروتی مارگ میں جو رہنے والے ہیں وہ کس طرح پوترتا کو پالن کر سکتے ہیں گھر گست میں رہ کر کے؟ اس پوترتا کی بات کو سنیاسی کیسے سمجھاویں گے؟ وہ تو گھر گست کو چھوڑ ہی دیتے ہیں, ماتاؤں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں ڈر کی وجہ سے کہ ہم نیچے گر جاویں گے. ہم نیچے گر گئے چھوڑ کے بھاگتے ہیں. بابا نے سمجھایا تھا کہ رام کے راجی میں منشیہ تھے, پھر بندروں کی سینا کیوں لی؟ منشیہ نہیں تھے کیا جو بندروں کی سینا لی؟ سنیاسیوں کی بات سے ایک دم ہائی جمپ لگا کے بندروں کی سینا پہ کیوں پہنچ گئے؟ کیا پرسنگانتر ہو گیا مرلی کا؟ پرسنگانتر نہیں ہو گیا. بتایا کہ جن میں بہت وکار ہوتے ہیں منشیوں میں, سنسار کے سب سے جاتی وکاری جو بن جاتے ہیں کلیوگ کے انت میں آ کر کے 84 جنم لے کر, ان کا ہی سہیوگ لے کر کے پرماتما نئی دنیا کی استھاپنا کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے رام کی بندر سینا.
راون تو 5 وکار ہیں. وہ 5 وکار کیسے چڑھائی کریں گے؟ 5 وکاروں کی بات ہے یہ, 5 وکاروں کو دھارن کرنے والوں کی بات ہے. کون سی رام کی سینا جو 5 وکار جاستی سے جاستی پرسنٹیج میں اپنے اندر دھارن کیے ہوئے ہیں؟ ایسے بندروں کی سینا لے کر کے راون کے اوپر آکرم کیا. دوسرا پیج, یہ باتیں باپ بتلاتے ہیں کہ تم سب سیتائیں ہو جو شوک واٹیکا میں ہو, مانا جو بھی آتمائیں ہیں وہ سب آتما روپی سیتا ہیں, بندھن میں کوئی نہ کوئی بنے ہوئے ہیں. ایسا کوئی منشیہ نہیں جو اپنے کو بندھن میں محسوس نہ کرتا ہو. دکھ میں شوک ہوتا ہے تو شوک واٹیکا نام دے دیا ہے. بیماری آدیا ہوتی ہے تو کیا دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ بیمار پڑیں گے تو ضرور خیالات چلے گا. ایسے تو نہیں کہیں گے کہ بیمار پڑے رہیں, پرسارت کرتے ہیں کہ اچھے ہو جائیں, نہیں تو دوائی آدھی کیوں کرتے ہیں؟ اب باپ کہتے ہیں میں تم بچوں کو ان دکھوں سے بیماریوں آدھی سے چھڑائے کر کے بہت اضافہ دیتا ہوں. مایا راون نے تم کو دکھ دیا ہے. مجھے تو کہتے ہیں سستی کا رچیتا. کائی کا رچیتا؟ سستی کا رچیتا. کیسی سستی کا رچیتا؟ دکھی سستی کا رچیتا. دکھی سستی کا رچیتا نہیں, جو سکھی دیوی سستی ہے اس کا رچیتا. سب کہتے ہیں بھگوان نے دکھ دینے کے لیے سستی رچی ہے, سکھ دینے کے لیے سستی رچی ہے, وہی سکھ دکھ دینے والا ہے. لیکن واستوکتا کیا ہے؟ بھگوان سکھ کی سستی رچتا ہے या दुख की सृष्टि भी रचता है। सुख दुख भगवान थोड़ी देता है दोनों। दुख देने के लिए भगवान बाप ने सृष्टि रची होगी क्या? कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए पुराना मकान बनाता है क्या? दुख देने के लिए नया मकान बनाता है? स्वर्ग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। कैसे कैसे कि वहां दुख होता है? वहां तो दुख होता ही नहीं, यहाँ दुख है। तब मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि रची? तो ये कली भी दुख की सृष्टि क्या भगवान ने रची है? किसने रची? रावण ने रची। भगवान को कोई और काम नहीं था क्या जो दुख की सृष्टि बैठ रची? दुख और सुख की सृष्टि भगवान नहीं रचते। भगवान तो नई दुनिया रचते हैं। नए मकान में सुख ही सुख होता है। वही मकान जब पुराना हो जाता है तो दुखदाई हो जाता है। बाप कहते हैं ये सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। ये खेल खेलने वाले तुम बच्चे ही हो और ये खेल भारत पर ही है। कौन सा खेल? भारत सबसे जासी सुखी और भारत सबसे जासी दुखी बनता है। तो ये राम और रावण का खेल है। भारत की रावण से हारे हार है। क्या? किससे हारे हार? भारत की हार है रावण से हारे। फिर रावण पर जीत पहन राम के बच्चे बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। किसको? वो त्रेता वाला राम नहीं, वो फेलियर राम नहीं, यज्ञ के आदि वाला। कौन से राम को शिव बाबा कहा जाता है? राम को भी तो शिव को भी पूजा करते हैं। राम का भी नाम लेना पड़ता है, शिव का भी नाम लेना पड़ता है। समझाने के लिए? क्या समझाने के लिए? क्या समझाने के लिए? गायन किसका है? राम राजी का गायन है। शिवराजी का गायन गायन नहीं है, लेकिन शिव ने जरूर राम में आकर के, राम की सोल में आकर के वो राम राज्य स्थापन किया होगा। इसलिए राम का भी नाम लेना पड़ता है और शिव का भी नाम लेना पड़ता है, क्योंकि आत्माएं तो दो अलग अलग है ना। शिव की सुप्रीम सोल अलग और राम की सोल अलग। इसलिए बोला राम को भी, राम का भी तो शिव का भी नाम तो लेना पड़ता है ना। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति। काय की प्राप्ति? सुख की प्राप्ति। सुख होता ही है स्वर्ग में। इस दुनिया में अगर सुख है भी तो कैसा सुख है? काग विस्ता समान सुख है, अल्पकाल का सुख है। अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख में बदल जाता है। तो बाप का वर्षा है स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं, क्या वहां कोई पद होने की बात नहीं? पद होने की बात कहां की है? जो माला बनती है ऊपर के मणके, नीचे के मणके, छोटी माला बड़ी माला, ये माला में जो पद दिखाए गए हैं वो कहां की यादगार है? जरूर संगमी की स्वर्ग की यादगार है, जब परमात्मा राम बाप आकर के उस स्वर्गीय संगठन की स्थापना करते हैं तो उसमें फिर है नंबर वार पद। स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। कौन सा गीत बजाया? माता, ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो स्वर्ग बनाने वाला कौन हुआ? है हुआ कौन? राम हुआ, शिव हुआ या माता हुई? अभी क्या बोल रहे थे? अभी क्या बोल रहे थे कि शिव बाबा आकर के स्वर्ग बनाते हैं किसके द्वारा? है राम राज्य की स्थापना करते हैं राम के द्वारा। और अभी क्या बता दिया? स्वर्ग का गेट खोलने के लिए महिमा किसकी है? न राम की है और न शिव की है, न कृष्ण की है। महिमा किसकी है? माता की। माताओं का सहयोग लिए बगैर, शक्तियों का सहयोग लिए बगैर शिव भी कुछ कर नहीं सकते। शिव अकेला कुछ कर नहीं सकता और शक्तियां भी अकेली शिव का सहयोग लिए बगैर कुछ कर नहीं सकती। तो भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते ही नहीं है। क्या जगदम्बा को कोई जानते ही नहीं है? अम्बा, जहाँ जहाँ अम्बा का मंदिर है बहुत मनुष्य जाते होंगे। ये बाबा भी बहुत बार गए हैं, बबूलनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु उस समय कुछ पता नहीं था कि हम इनके पास क्यों जाते हैं। कितना बेसमझ थे, अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। कौन बोल रहा है? शिव बाप। वो कहते हैं मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। किनको? ब्रह्मा को। क्यों? अब मंदिरों में जाना बंद कर दिया क्या, इसलिए समझदार बोल दिया? जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। किसकी सौभाग्य विधाता? भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर के सर्विस करनी चाहिए। क्या सर्विस? किसके मंदिर में जाके करनी चाहिए? अंबाजी के मंदिर में। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और अंबाजी के मंदिर में क्या अंतर होता है? है? अंतर क्या होता है? है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा भव्य होता है और अंबा का मंदिर छोटा होता है। छोटा होता है लेकिन फिर भी वहां भक्तों की भीड़ जास्ती लगती है। क्यों? अंबा के मंदिर में इतनी जास्ती भीड़ क्यों लगती है? सबकी मनोकामना अंबा जी पूरी करती है, इसलिए भक्तों की भीड़ जास्ती अंबा के मंदिर में लगती है। है? वहां सबसे बड़ा मेला लगता है अंबा का, इसलिए लगता है। वैष्णो देवी मंदिर में सबसे जास्ती भीड़ लगती है कि नहीं लगती है? इतना बड़ा मेला लगता है तो किस लिए लगता है? है? अरे अम्बा के मंदिर में इतना बड़ा मेला लगता है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, अमरनाथ पे इतने यात्री नहीं पहुंचते, लेकिन जास्ती भीड़ कहाँ होती है? जगदम्बा के मंदिर में। तो इतनी भीड़, इतने मेला क्यों लगता है? है? भाग्य विधाता? नहीं, मेला किस बात की निशानी है? मिलन मेले की निशानी है। जरूर जगदम्बा ने बाप के साथ सबसे जास्ती मिलन मेला मनाया होगा। इतना मेला और किसी ने नहीं मनाया है, इतनी शक्ति और किसी ने नहीं भरी है जितनी जगदम्बा ने भरी है। इसलिए मेला सबसे जास्ती किसका गया हुआ है? जगदम्बा का गया हुआ है। और वो जगदम्बा ही भारत की सौभाग्य विधाता गाई हुई है। तो अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। किसकी? किसकी सर्विस करनी चाहिए? जो अंबा के भगत हैं। क्या? कहाँ की बात है? भक्ति मार्ग की बात है या अभी की बात है? है? अभी की बात है। तो जो अंबा के भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन मंदिरों में जाकर के तुमको सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। किनको? भक्तों को, अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत हैं। मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। कौन है भक्ति मार्ग वाले? मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। कौन से चित्र को? नहीं, सरस्वती ओम राधे के चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर उनको समझाओ और साथ में ये गीत ले जाओ, टेप रिकॉर्ड। माता, ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता, और उनसे पूछो, ये गीत ही तुम्हारी सारी में सारी गीता है। जो गीत मुरली में शुरुआत में बजाए जाते हैं, ये गीत ही तुम्हारी सारी गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले के अंदर सच्चाई बहुत चाहिए। किस बात की? अम्बा के मंदिर में जाकर के जो सच्चाई, जिनके अंदर सच्चाई होगी तो जरूर उनके अंदर प्योरिटी भी होगी, और जिनके अंदर प्योरिटी होगी वो ही सच्ची महिमा कर सकेंगे। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर के समझाओ। जगदम्बा भी कन्या थी। क्या थी? जगदम्बा भी कन्या थी, ब्राह्मणी है। अब जगदम्बा की इतनी भुजाएं क्यों दी हुई है? एक तो बात बोली, जगदम्बा भी कन्या थी, भी शब्द क्यों लगाया है? जगदम्बा भी कन्या थी, भी शब्द क्यों लगाया? माना जितनी और देवियां हैं वो भी कन्याएं होती हैं। कोई ऐसी देवी नहीं होती है जो पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाली न हो। सभी पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाली हुई है, तब उनकी पूजा हुई है। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। अगर जीवन में किसी ब्रह्मा कुमारी ने पवित्रता धारण नहीं की है तो वो देवी के रूप में पूजी नहीं जा सकती। तो अब जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है? मैंने सिर्फ जगदम्बा ने ही प्योरिटी को धारण नहीं किया है, लेकिन उसकी जो भी सहयोगी शक्तियां हैं, नंबर वार, उन्होंने भी जरूर पवित्रता को धारण किया होगा, क्योंकि उनके मददगार बच्चे भी बहुत हैं। किनके? जगदम्बा के मददगार बच्चे भी बहुत हैं। शक्तियों की सेना है ना, क्या कहा जाता है? पांडव सेना और शक्ति सेना। तो चित्रों में फिर बाहें दिखा दी है। किसकी बाहें? जगदम्बा की बाहें। जगदम्बा की बाहें स्त्री चोले में होंगी या पुरुष चोले में होंगी? है, स्त्री चोले में होंगी, पुरुष चोलों में क्यों नहीं होंगी? है, जगदम्बा की भुजाएं पुरुष चोले में क्यों नहीं होंगी? पुरुष चोले वाली जगदम्बा की भुजाएं क्यों नहीं हो सकती? क्या जो पुरुष चोले वाले हैं वो जगदम्बा के सहयोगी नहीं बनते? है, बनते। कौन सी विशेष बात की बात है यहाँ पर? प्योरिटी की। जो पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन हो गए तो वो सहयोगी बने, रक्षक बने या भक्षक बने? क्या बनेंगे? है, वो भक्षक साबित हो जाएंगे। सहयोगी कौन साबित होंगे? पुरुष चोले साबित होंगे या स्त्री चोले साबित होंगे? जरूर स्त्री चोले कोई होंगे जिन्होंने जगदम्बा की विशेष सहयोग दिया होगा। तो चित्रों में फिर बाहें दिखा दी हैं। शरीर कैसे दिखलाते? पूरे शरीर तो दिखाई नहीं सकते, तो क्या दिखा दिया? सहयोगी के रूप में बाहें दिखाई दी है। बाहें दिखाना ये निशानी सहज है और ये शोभती भी है। अगर उनको टांगे दे दें तो पता नहीं जाने कैसी शक्ल हो जावे। इसलिए टांगे नहीं दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। कोई ऐसा देवी देवता है जिसको टांगे ज्यादा दिखाई हो? है? ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं, तुम हो सब उनके बच्चे। किनके? नहीं, उनके बच्चे। इसे ब्रह्मा की तरफ इशारा नहीं किया जहां मुरली चलाई जा रही थी, कहां इशारा किया? तुम हो सब उस ब्रह्मा के बच्चे, उनके बच्चे। परंतु इतनी बहें तो दे ही नहीं सकते जितने तुम बच्चे हो, तो तुम कन्याओं माताओं को खास सर्विस में लग जाना चाहिए। क्या कहा? जगदम्बा की अगर भुजा बनना है तो क्या करना चाहिए? है? तुम कन्याओं माताओं को खास जगदम्बा की सेवा में लग आओ। पुरुष लग जाए तो, जगदम्बा की सेवा में अगर पुरुष लग जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? है? कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? भुजा बन जाएगी क्या? भुजा नहीं बन जाएगी, और ही मटिया मेट हो जाएगा भाग्य। इसलिए बोला तो तुम कन्याओं माताओं को खास, खास किसको सर्विस में ले जाना चाहिए? कन्याओं माताओं को जगदम्बा की सर्विस में लग जाना चाहिए, अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर के महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगे जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालेंगी। क्या तुम नई ब्रह्मा कुमारियां हो और वो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां हैं? तो तुम नई ब्रह्मा कुमारियां इतना नाम निकालेंगी जो पुराने भी नहीं निकाल सकते। बाबा ने भी इतना नाम नहीं निकाला है। क्या कहा? है? ज्यादा महिमा कौन निकालेगा? तुम कन्या माताएं जगदम्बा का जास्ती नाम बाला कर सकती हो, बाबा भी उतना नाम बाला नहीं कर सकते जितना तुम बच्चियां नाम बाला कर सकती हो। तो शिव बाबा ने भी ये नाम नहीं निकाला है जगदम्बा का इतना। भले मुरली में जगदम्बा की बहुत महिमा करते रहते हैं, लेकिन वो मुख की महिमा है या प्रैक्टिकल महिमा है? वो तो मुख की महिमा हुई, क्योंकि शिव बाप तो आकर के सिर्फ ज्ञान ही सुनाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म किसको करना है? जरूर है, बच्चों को कर्म करना है। तो यहाँ माता की महिमा निकालने के लिए जो प्रैक्टिकल कर्म करने की बात है, वो कन्या माताओं के ऊपर जिम्मेवारी है। तो तुम बच्चों ने भी इतना नाम नहीं निकाला है, ब्रह्मा ने भी नाम नहीं निकाला है, और शिव बाबा ने भी इतना जगदम्बा का नाम नहीं निकाला है। ये छोटी छोटी कन्याएं इतना कमाल कर सकती हैं। कन्याओं माताओं में जास्ती कमाल कौन कर सकती है? छोटी छोटी कन्याएं। क्यों छोटी छोटी कन्याएं क्यों कर सकती है? क्योंकि बड़ी है उनमें कुछ थोड़ी इम्प्योरिटी की बात आ सकती है दस की व्यक्ति में। जो शादीशुदा माताएं हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो छोटी छोटी कन्याएं जो हैं वो इतनी कमाल कर सकती हैं। कितनी? जो संसार में जगदम्बा की महिमा फैल जाए और नई दुनिया का संगठन स्थापन हो जाए। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। क्या? हजारों आकर के तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे, उनके आगे नहीं इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे आकर के गिरेंगे। किनके आगे नहीं गिरेंगे? हाँ, उन सन्यासियों के आगे जाकर के इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आकर के आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज छोड़नी पड़ेगी। है? ये क्या बात? जगदम्बा के मंदिर में जाकर के सेवा करने के लिए लोकलाज छोड़ने की क्या बात है? जरूर कोई ऐसी बात रही होगी। कौन सी ऐसी बात है? लोकलाज छोड़ने की बात रही होगी। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे, लेकिन इसमें लोकलाज त्यागनी पड़े, बिल्कुल ही नष्टो मोह होना पड़े। क्या लोकलाज बना? जो संसार की लज्जा है लोकलाज, उसको त्याग करने के लिए क्या करना पड़े? उसे दुनियावी मान मर्तबा पाने के लिए नष्ट मोह होना पड़े। कहेंगे मैंने तो सगाई की ही नहीं है, सगाई की हुई फिर कह दे हमको शादी नहीं करनी है, इतना उमंग उत्साह चढ़ जाए किसको, छोटी छोटी कन्याओं को ये उमंग उत्साह चढ़ जाए, भले उनकी शादी सगाई भी कर दी गई हो फिर भी क्या कहें कि हमको शादी नहीं करनी है। यहाँ का तीर लग जाता है तो फिर कैंसिल कर देती है, शादियां कैंसिल तो बहुत होती है ना, अदर कुमारी को तो फिर दाग लग जाता है, क्यों, क्योंकि अदर कुमारी पहले शादी करे फिर बाल बच्चे पैदा करे, अदर कुमारी कही जाए फिर बाद में पवित्र जीवन व्यतीत करे ब्राह्मणी बने तो उसको तो दाग लग गया। कुमारी ने सगाई की और दाग लगना शुरू हो जाती है, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, कब कब क्या से क्या हो जाता है, जब जब शादी बर्बादी हो जाती है तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उनको मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए, किसकी बात की है, हाँ उम्र आदि की बात की कि उनको अल्पकाल के लिए मर्तबा मिला, लेकिन तुम बच्चियों के लिए जो जगदम्बा की भुजाएं बनती हैं उनको सदा काल के लिए मर्तबा मिलने वाला है। और मम्मा को मर्तबा मिलता है, तुम बच्चियों को मर्तबा मिलता है 21 जन्म के लिए, 21 जन्म से भी जाते कैसे, 21 जन्म से जाते कैसे, 21 जन्म वास्तव में मर्तबा तो मिलता है, सुख शांति तो मिलती है, लेकिन गायन और पूजन कहाँ होता है, भक्ति मार्ग में होता है। इस 21 जन्मों के आधार पर ही 63 जन्मों की प्राप्ति भी बनती है, दुख तो पिछाड़ी में होता है। तुम भी नर से नारायण है, नारी से लक्ष्मी बन रही हो, संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा, उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, सो भी कितनी फिक्र रात रहती है, किनको किनको अल्पकाल का सुख मिलता है, हैं? हैं? सन्यासियों को अल्पकाल का सुख मिलता है, सो भी उनको फिक्रात बहुत रहती है, और हम तो हैं गुप्त, हमारा सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है, हमको बाहर में कुछ भी नहीं करना है, वो तो शो करते हैं, कितना शो करते हैं, ये राज्य तो रुन्ने के पानी में चले, मृग तृष्णा के समान है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, यह जिसको राज्य समझते हो यह राज्य तो अभी खत्म हुआ कि हुआ, रक्त की नदियां बहनी हैं, तब पता चलेगा कि यह राज्य का सुख है या दुख है। पाकिस्तान के समय कितना मारामारी घरों घरों में चलती थी,